अस्सलाम वालेकुम। नॉवल डियारे दिल की, एपिसोड नंबर 10। आगा जान और तुम्हारे ताल्लुकात में रुकावट का सबब हमेशा ये निकाह ही बना। इन गुजरे बरसों में तुम शायद कभी इनकी मोहब्बत का कबूल कर ही लेती, मगर तुम्हें ये बात भूलती नहीं कि वालहाना मोहब्बतें निछावर करते इस दादा ने तुम्हें एक जबर के रिश्ते में बांधा है। वली ने बगौर इसे देखते धीमी आवाज में कहना शुरू किया, मैं तुम्हें बहुत सी बातों के लिए गलत समझता हूँ, लेकिन जबरन कायम हुए इस रिश्ते से इनकार में तुम हक बजानब हो। मर जाने वालों की ख्वाहिशात पर जिंदा लोगों को कुर्बान कर डालना ये कहा कहाँ इंसाफ है। जब ये निकाह हुआ हम उस रोज से पहले कभी एक दूसरे से मिले तक ना थे, एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। मैं शायद इनकार कर देता, मगर तब पापा के इंतकाल को इतने थोड़े दिन हुए थे, मैं जहनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब था। मुझसे बहरोज पापा ने इस रिश्ते के लिए कहा और मैं इन लम्हों में इन्हें इनकार नहीं कर पाया। लेकिन कुछ अरसा में जब मेरी जहनी हालत बेहतर हुई, मैं पापा की मौत के सदमे से बाहर निकला। मैंने तभी सोच लिया था कि जबरन इस रिश्ते को नहीं निभाऊंगा। आगा जान कहते थे अभी फारा की तालीम मुकम्मल होने दो, इस मौजू को ना छेड़ो, मगर मैंने इसे बिल्कुल वाज़े अंदाज में कह दिया था कि मैं फारा से बराह रास्त बात किए बगैर, इसे इसकी मर्जी जानने बगैर कभी इस शादी के लिए आमादा नहीं हूँगा। मैंने एक बार तुम्हें फोन करके भी यही यकीन दिलाना चाहा था तुम इस निकाह से डिस्टर्ब ना हो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं महसूस करता था कि तुम मुझसे खायफ रहती हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती उठाकर साथ ले जाऊंगा। उस रोज तुमसे बात ना हो सकी, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा मुझ पर यह बहुत अच्छी तरह वाजह होता चला गया कि तुम इस रिश्ते से किस कदर बेजार और नाला हो। मैं जबर के इस रिश्ते को बरकरार रखने के कभी भी हक में ना था, मगर आगा जान के बारे में मैं तुम्हें बताऊं, फारा वो इस निकाह को खत्म करते इसलिए डरते थे, मुझे इसलिए रोकते थे क्योंकि इन्हें लगता था कि ये रिश्ता इन्हें इनके मरहूम बेटे के फैमिली के साथ जोड़कर रख सकता है। इस निकाह रुखसती की ख्वाहिश में इनकी सिर्फ यही गर्ज पोशीदा थी, फारा कि इस तरह फिर तुम इनके करीब इनके पास आ जाओगी। वो इस रिश्ते के टूटने से डरते थे फारा, इन्हें लगता था अगर वो रिश्ता टूटा तो शायद फिर तुम उनसे अपना हर रिश्ता तोड़ डालोगी, इनसे कभी मिलोगी नहीं। लेकिन ये शादी ऐसे हो जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तुम्हारे फाइनल ईयर तक मैं आगा जान की वजह से मसलहतन खामोश था, मगर फाइनल ईयर के बाद मैं खुद तुमसे ये कहने के लिए तुमसे मिलने आ रहा था कि तुम्हारी मर्जी नहीं है, चुनाचा हम इस रिश्ता को हंसी खुशी खत्म कर देते हैं। लेकिन ये सब कहने के साथ मैं तुमसे ये भी कहना चाहता था कि तुम आगा जान के साथ अपने रिश्ते को इस निकाह से हट कर देखो और इनके साथ अपने रिश्ते को कबूल कर लो। इनके दिल की खुशी के लिए एक बार यहाँ हमारे घर जरूर आओ। लेकिन इससे पहले कि तुमसे आकर अलहदगी और तलाक की बात करता, तुम्हारी तरफ से ये मुतालबा लड़ाई झगड़े और जंगो जदल के साथ पेश हो गया। दो पढ़े लिखे लोगों के मबैन जो एक मामला खुश असलूबी और डिसेंट तरीके से हल हो सकता था, वो इंतहाई जाहलाना अंदाज में सामने लाया गया। तलाक, जायदाद में हिस्से का मुतालबा, बात ना करना, राबता रखना पसंद ना करना, इन सब का आगा जान क्या मतलब लेते, यही ना कि तुम इस निकाह को नहीं दर हकीकत इन्हें रद्द कर रही हो, इनसे कतअ तलकी का ऐलान कर रही हो। इनकी तबीयत की इस दर्जा खराबी की वजह भी यही बात थी। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर इसी धीमे लबो लहजे में दोबारा गोया हुआ, ये सब तफसील मैंने तुम्हें इसलिए बताई है कि तुम समझ सको कि आगा जान की खुशियों का ताल्लुक तुम्हारे इनके करीब होने, इनके पास आकर रहने से है, ना कि हमारे निकाह या रुखसती से। वो हमसे कोई कुर्बानी सिर्फ नहीं, सिर्फ मोहब्बत मांगते हैं। इनकी खुशियां हम लोगों की खुशियों में पोशीदा हैं। इस बार जैसे ही वो रुका, वो मुस्तरिद सी होकर फौरन बोली, लेकिन इस रिश्ते में इनकी खुशी तो थी ना वली, आगा जान की खुशी तुम्हें अपने पास देखने में है फारा। तुम यहाँ इनके पास आ गई, सब बदगुमानियां दूर हो गईं, तुमने इनकी मोहब्बत को पूरे दिल के साथ कबूल कर लिया, तो तुम खुद देख लो वो कैसे सेहतमंद और खुश नजर आने लगे हैं। और अब जबकि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो फिर अब आगा जान के रंजीदा होने के लिए क्या वजह बाकी बची है। लेकिन वली, अगर हमने तलाक की बात की तो इन्हें तकलीफ तो पहुंचेगी, कितना भी कुछ कहें, बहरहाल इस निकाह से इनके दोनों बेटों की यादें, इनकी आरजुएं जुड़ी हैं। क्या आगा जान के दिल को दुख नहीं होगा हमारे इस रिश्ते को ख़त्म करने पर। वो फिर बेचैनी और इस्तराब में घिर कर बेसाख्ता बोली, आगा जान के दिल को इस वक्त ज़्यादा तकलीफ़ और दुख पहुँचेगा पारा जब वो ये देखेंगे कि इनकी पोती सिर्फ इनके दिल की खुशी के लिए कुर्बानी देकर एक समझौते की जिंदगी का इंतखाब कर रही है। वो पुरसकून लहजे में बोला, सारी जिंदगी साथ गुजारने के फैसले किसी के लिए और किसी की खातिर नहीं किए जाते। तुम्हारी शादी वही होना चाहिए जहाँ तुम्हारे दिल की मर्जी है, और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं उस लड़की से शादी करूँगा जो मेरा साथ मेरे लिए मेरी वजह से चाहेगी और जो मुझसे मोहब्बत करेगी। तुम मेरे ताया की बेटी हो, मेरे लिए हमेशा काबिल एहतराम रहोगी। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो। हम इस रिश्ते को खुश असलूबी से बगैर किसी झगड़े और फसाद के ख़त्म कर देंगे। तुम्हें इस हवाले से किसी भी तरह की टेंशन लेने की कतन कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि आगा जान ना तुमसे खफा होंगे ना मुझसे, बल्कि वो हम दोनों की खुशी में मुकम्मल तौर पर खुशी और राजी होते हंसी खुशी हम दोनों की वहाँ शादियाँ करवाएंगे जहाँ हम करना चाहेंगे। इसे जो कहना था वो कह चुका था, और इसके कहने के लिए इसने कुछ छोड़ा नहीं था। इसने इसे कमरे से जाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन अब वो यहाँ बैठकर क्या करती। वो सारी बात खत्म कर चुका था, ना इल्जाम आयद किए ना बुरा भला कहा। वो इससे क्या क्या कुछ सुनने की उम्मीद लेकर आई थी। वो अपने दिल की भड़ास निकालेगा, अगले पिछले सारे हिसाब बेपाक करता पता नहीं इसे क्या क्या कुछ सुनाएगा, कड़वी कसीली बातें करेगा, इससे नफरत का इजहार करेगा। तुमसे शादी कर लूं, तुम हो क्या चीज़ फारा बहरोज खान, क्या समझती हो तुमको मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स कहीं की कोई राजकुमारी शहजादी और मैं तुम्हारा अदना गुलाम। तुम कहोगे शादी नहीं करनी, तलाक दे दो मैं दे दूंगा। तुम कहोगे तलाक का मूड नहीं, चलो शादी कर लेते हैं मैं शादी कर लूंगा। नफरत से बोलता वो इसकी औकात याद दिलाएगा, फारा बहरोज खान तुम जैसी घटिया लड़की को मैं अपनी बीवी की हैसियत दूंगा। ये खुशफहमी तुम्हें लाहक क्यों कर होगी कि मैं तुम्हें अपनी बीवी के मर्तबे पर फाइज कर दूंगा। वो ये और इससे भी ज्यादा दिल दुखाते नफरतों में डूबे फिक्रे वली की जानिब से सुनने की उम्मीद लेकर आई थी। वो आला तलीम याफ्ता था, खुश शक्ल था, अच्छे खानदान से था, दौलतमंद था। इसमें किसी चीज की कमी थी जो वो एक ऐसी लड़की को कबूल कर लेने पर आमादा हो जाता जो जिंदगी भर इसे ठुकराती आई थी। इसकी नफरत आज वो इसे लुटा सकता था, लेकिन वली सहेब खान ने इसके साथ नफरत का रिश्ता भी नहीं रखना चाहा था। वो इसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता था। वो वाकई अपने लफ्जों से फिरने वाला इंसान नहीं था, वो अनकरीब इसे छोड़ देने वाला था। जो ठंडे पुरसकून महजब लहजे में फासला रखते जातियात को दरमियान में लाए बगैर बात करे इससे क्या कहेंगे। इसने तो आपके साथ सिरे से कोई रिश्ता चाहे वो नफरत और दुश्मनी ही का क्यों ना हो रखने से इनकार कर दिया है। डैडी की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम, इनके कायम करदा रिश्ते की इज्जत, सआदतमंद फरमा बरदार बेटी का फर्ज, वो क्या क्या बुलंद अजायम लेकर इसके पास आई थी। और वो कह रहा था कि वो इसके तलाक के मुतालबे को दुरुस्त समझता है। मुर्दा कदमों से जीना चढ़ते इसका दिल चाह रहा था वो चिल्ला चिल्ला कर रोए, शायद इसकी फ्रस्ट्रेशन इसी तरह दूर हो पाए। वो पूरी रात शिद्दतों से रोती रही थी, वो पूरी रात जागती रही थी। अजान की आवाज कानों में पड़ी तब वो बिस्तर से उठी। ये उसके डैडी का कायम करदा रिश्ता है, इसे टूटता देखना इसके लिए जिस्म से रूह निकाल देने वाला अमल होगा। टूटना देखना तो बहुत दूर की बात, इसे तो सिर्फ ये जानकर ही कि वली ने इसके इस रिश्ते को तोड़ने का जो वादा इससे कर रखा था वो अपने इस वादे पर पूरी तरह कायम भी है और अन करीब इसे तोड़ भी देने वाला है। इसे अपनी सांसें रुकती महसूस हो रही है। नमाज के लिए सर पर दुपट्टा लेते इसने सोचा, मुझे तलाक चाहिए, मैं वली सहेब खान के साथ किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहती। जाय नमाज बिछाते इसके अपने अल्फाज इसके कानों में गूंजे। पहले वो सिर्फ 1 जनवरी की दोपहर को बदलना चाहती थी, आज माजी के कई लम्हे थे जिन्हें वो बदलना चाहती थी, जिन्हें वो दोबारा जीना चाहती थी। वली की फोन कॉल, अब वो इससे बात करेगी, वो इसकी बात सुनेगी। जरमीना की शादी का कार्ड, अब मम्मी हकारत अमेज बर्ताव करें, कार्ड हाथ में ना पकड़ें। वो सामने सोफे से उठकर वली के पास आएगी, इससे कार्ड लेगी। हॉस्पिटल के दाखिले दरवाजे पर वो इसका मुंतजिर खड़ा है, पीछे कहीं मोइज भी मौजूद है। इसकी सालगिरह का दिन मनाने वो मोइज के पास बाद में जाएगी, पहले वली की बात सुनेगी। वो बेवजह तो नहीं आया, यकीनन कुछ कहने कोई बात करने आया है। वो मरीज के साथ डिनर कर रही है। वली इससे इसके साथ बैठा देखकर गुस्से से उठकर चला गया है। वो इसी रोज घर आकर इसे फोन करेगी, बताएगी मरीज सिर्फ इसका दोस्त है। डैडी के इंतकाल के बाद जब मम्मी के बदलते रवैयों के सबब वो बिल्कुल तनहा हो गई थी, तब इसके करीब मरीज के अलावा और ऐसा कोई नहीं था जिससे वो दिल की बातें कह सकती। इसके बाकी सब दोस्त इसके हम उम्र इमेच्योर, लाउबाली और गैर संजीदा थे, जबकि वो इससे 7 साल बड़ा था, मेच्योर और समझदार था। वो आगा जान के साथ इसके रिजल्ट का सुन लेने के बाद आया है। मम्मी तजम्मुल मामू और मोइज ड्राइंग रूम में इन लोगों से अलानिया तलाक का मुतालबा और झगड़ा शुरू करें, इससे पहले खुद ड्राइंग रूम में चली जाएगी। वली इसकी पढ़ाई खत्म हो जाने ही का इंतजार कर रहा था ना, आज यकीनन वो खुद इसकी अलहदगी ही की कोई बात करने आया है। वो इसकी हर बात पूरे ध्यान और तवज्जा से सुनेगी। काश माजी के लम्हों पर अब इसे इख्तियार मिल जाए। काश काश माजी का अलमिया यही तो है कि वो याद हमेशा रखा जा सकता है, बदला कभी नहीं जा सकता। सुन्नतों की अदायगी के बाद इसने फर्ज की नीयत बांधी। वह नमाज यकसोई से नहीं पढ़ रही थी, नमाज के दौरान आने वाले ख्यालात पर गिरफ्त नहीं, मगर इन ख्यालात को जहन से झटकना तो चाहिए। जहन को यकसू करते इसने फर्ज अदा किए। दुआ के लिए हाथ उठाए तो समझ में ना आया वो अल्लाह से क्या मांगे। जिंदगी के पिछले कई बरसों से वो अल्लाह से वली सहेब खान से निजात पाने की दुआ मांगती आई थी, आज क्या मांगे। अब मुझे इसे निजात नहीं, इसका साथ चाहिए। वो सब बुलाकर मुझे अपनाने के लिए तैयार हो जाए, वो फिर कभी मुझे छोड़ने की बात ना करे। वो दुआ में सिवाय आंसू बहाने के अल्लाह से कुछ भी ना मांग पाई। बहुत देर खामोश आंसू बहाते रहने के बाद वो जाय नमाज पर से उठी। मैं इस लड़की से शादी करूंगा जो मेरा साथ मेरे लिए मेरी वजह से चाहेगी और मुझसे मोहब्बत करेगी। जाय नमाज का पट पर से वापस उठाते हुए इसे वली के अल्फाज याद आए और इन लफ्जों के साथ कुछ अपने भी मगरूरियत लिए लफ्ज, खुद पसंदी तकबर वाली सोचे। और अगर मोइज का साथ किसी सबब इसे ना मिल सका, इसके लिए दुनिया में आखिरी मर्द वली सहेब खान बचा तो वो कुंवारी रहने और तनहा जिंदगी गुजारने को अपने लिए मुंतखब करेगी। वो जाय नमाज तय करने लगी। इसकी दुनिया में आने वाला पहला मर्द वली सहेब खान है, इसकी दुनिया में आने वाला आखिरी मर्द वली सहेब खान होगा। हजारों लाखों करोड़ों में से अब भी इसे किसी एक को चुनने को कहा जाए तो वो अपने लिए उसी को चुनेगी। इसने अपने दिल की आवाज सुनी। जाय नमाज तय करते इसके हाथ यकलख थी साकत हुए। अपने दिल पर हाथ रखती हुए एकदम ही जाय नमाज हाथ में लिए लिए ही कारपेट पर गिर सी गई। जो मेरा साथ मेरे लिए मेरी वजह से चाहेगी और जो मुझसे मोहब्बत करेगी। मोहब्बत का कोई लिटमस टेस्ट नहीं होता, खड़े खड़े हाँ या ना का पता नहीं चलता। बाज़ औक़ात तो खुद अपनी ही कैफियत इंसान बहुत देर बाद जाकर समझ पाता है। वो आज सारी रात क्यों रोई है, इसलिए कि जिससे वो मोहब्बत के रिश्ते में बंध गई है वो इससे हर रिश्ता तोड़ देने की बात कह रहा है। वो इसे अपना यकीन नहीं दिला सकी, अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिला सकी, इसीलिए मुसरिब है, इसीलिए बेकरार है। मोहब्बत वली सहेब खान से, जिससे वो नफरतों का ऐलान करती आई है उससे, हाँ हाँ उससे, ये सच है, यही सच है। मोइज इसे कभी भी मोहब्बत नहीं थी, अगर होती तो वो इससे मिलती या राब्ता चाहे ना करती, इससे दिल में याद जरूर करती। यहाँ इस घर में आए से 1.5 महीना हो गया था और इन 1.5 महीनों में आगा जान मम्मी और डैडी के बाद जिस चौथे शख्स को इसने हम्मा वक्त सोचा वो सिर्फ वली सहेब खान था। ये मोहब्बत ही इनके बीच मौजूद मजबूत रिश्ते की कशिश, वो तो अभी ये भी नहीं समझ सकती। लेकिन वो इतना जरूर जानती है कि जब आगा जान हस्पताल दाखिल हुए थे, जब इसने और वली ने हस्पताल में वो रात साथ गुजारी थी, जब वो कॉरिडोर के आखिरी अंधेरे में डूबे हिस्से में इबादत कर रहा था और वो चंद इंचों की दूरी पर जमीन पर बैठे इसे इबादत करता देख रही थी, तब इस अंधेरे में एक रोशनी फैली थी। वो रोशनी से वली सहेब खान का जाहिर बातिन सब दिखा रही थी। वो रोशनी से इस शख्स की मोहब्बत में मुब्तला करवा रही थी। इस रात के लम्हों के बाद जब वो इसके पास से उठी, तब से आज तक गुजरने वाले हर लम्हे में वो इसके मुखालिफ नहीं, इसकी समत इसकी तरफ जाने वाले रास्ते पर भाग रही थी। मोहब्बत की रोशनी बिखेरती इस रात की अगली सुबह आगा जान के घर पर मोइज इसके सामने खड़ा था और वली बराबर में, तो इसे मोइज की नहीं वली की परवाह थी। इसे मोइज का वली को गाली देना बुरा लगा था। वो इससे पहले मई से बिल्कुल सुकून से बात कर रही थी, लेकिन वली के लिए इसकी इस बदकलामी के बाद वो यकदम भड़क उठी थी। आगही का ये लम्हा, अदराक का ये पल बेहद कीमती था। वो अपने दिल में इस शख्स के लिए मोहब्बत पा रही थी, जो कह रहा था वो सिर्फ उससे शादी करेगा जो इसकी मोहब्बत में इस तक आएगी, जो किसी के लिए और किसी की खातिर नहीं, सिर्फ इसके लिए, इसकी खातिर इससे रिश्ता बांधेगी। वो बेख्तियार फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी जुबान से, अपने अमल से, हर तरह इसने हमेशा वली को यही बात समझाई थी कि वो अपनी जिंदगी में वली सहेब खान को नहीं, सिर्फ मोइज तजम्मुल को शामिल करना चाहती है। फिर आज अगर वो जाकर इससे मोहब्बत का इकरार करे तो क्या वो इसका यकीन करेगा? इसे मई से मोहब्बत नहीं, वली से मोहब्बत है। वो चीख चीख कर भी वली को बताएगी, वो तब भी इसका यकीन नहीं करेगा, इसलिए कि बेशुमार बार, हा बेहिसाब बार, वो अपने लफ्जों और रवैयों से सब कुछ इसके बरक्स साबित करके दिखा चुकी है। अपने रास्ते में ये कांटे इसने खुद बिछाए थे। वो किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकती थी, वो झूठी और मुनाफिक लड़की नहीं थी। ये इसमें शायद वाहिद खूबी थी, इसमें इतनी जुरात थी कि जिससे नफरत करती हो इससे नफरत के इजहार कर सके, और जिससे मोहब्बत करती हो इससे मोहब्बत का इकरार कर सके। मगर जिससे वो हजारों बार नफरत का इजहार कर चुकी है, अब ये कैसे कहे कि मेरी आन वाहद में दिल की दुनिया ही बदल गई, मैं पूरी की पूरी बदल गई। मोहब्बत के होने का दराक पाकर रोना, ये भी शायद सिर्फ फारा बहरोज खान ही की तरह जिंदगी को अपने हाथों उजाड़ने वाले लोगों ही के नसीब में होता है। मोहब्बत पाना, मोहब्बत करना, वो इन सब से भी पहले अदराक आगही के इस लम्हे में शिकस्त खाती बुरी तरह रो रही थी। आप अच्छी बीवी ना बन सकी, मैं अच्छी बेटी ना बन सकी, मैंने अपना ये गुनाह कबूल कर लिया, आप कब करेंगी? वो इन दिनों अपने गुनाहों को याद करने और कबूल करने के अमल से गुजर ही थी। बेटी ने एक सवाल इनके आगे रखा था और वो इसका जवाब तलाशती अपने पूरे माजी को दोहरा रही थी। क्या कोई शख्स एक ही वक्त में अपने तमाम रिश्तों के साथ मुखलिस नहीं हो सकता? क्या मोहब्बत के लिए अल्लाह ने हमारे दिलों में इतनी थोड़ी सी जगह रखी है? हम एक वक्त में अपने तमाम करीब तरीन और अजीज तरीन रिश्तों से एक जैसी मोहब्बत कर ही नहीं सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा शोहर बुरा बेटा होगा और अच्छा बेटा बहुत बुरा शोहर, ये कहाँ लिखा था, ये किसने कहा था? इस शख्स मोहम्मद बख्तियार खान से इन्हें पुरखाश थी क्या? ये नफरत, ये दुश्मनी थी किन बुनियादों पर? इस शख्स से बरसर पेकार नफरत के जिस मजबूत किले में वो बरसों से मुकय्यद थी, इनकी बुनियादें खड़ी किस चीज पर थी, किस जज्बे पर थी? एक आवाज उभर रही थी इनके अंदर से, सिर्फ एक आवाज, हसद हसद और सिर्फ हसद। वो इस बूढ़े कमजोर इंसान से हसद करती थी, रोज अव्वल से करती थी, अपनी शादीशुदा जिंदगी के पहले रोज से करती थी। माँ बाप को छोड़कर इनके दिलों को दुखाकर इन्हें नाराज करके समझी कि हम खुश रह लेंगे, तो हकीकत में ऐसा हुआ नहीं करता। हमारे हर गुनाह हर गलती की सजा हमें रोजे आखरत जजा सजा के दिन मिलेगी, मगर माँ बाप की नाफरमानी वो वाहद गुनाह है जिसकी सजा आखरत के साथ हम इस दुनिया में भी दिल की बेसकुनी और बेतमिनानी की सूरत पाते हैं और सारी जिंदगी पाते रहते हैं। इनकी मोहब्बत में अपने बाप को, भाई को, अपने घर को छोड़कर आने वाला इनका वो महबूब शोहर रातों को सोते सोते बेकरारी से उठकर क्यों बैठ जाया करता था? अक्सर इनके साथ बातें करते मुस्कुराते वो यकलख चुप क्यों हो जाया करता था? कभी बहुत खिलखिलाकर हंसते यकदम ही इसकी आंखों में उदासियां क्यों छा जाती थी? शादी के 5 साल बाद बहुत मिन्नतों मुरादों के बाद वो बेटी पैदा हुई, जिसके पैदा होने से पहले वो इतने पुरजोश इतने खुश थे, तो इसे पहली बार देखने गोद में उठाने पर बजाय मुस्कुराहट के इनकी आंखों में आंसू क्यों उमड़ आए थे? इस पल किसकी कमी महसूस की थी उन्होंने अपनी जिंदगी में? सिर्फ इस पल नहीं, जिंदगी के हर लम्हे में, हर खुशी के मौके पर, हर कामयाबी की मंजिल तय करने पर, शाहाना ठाट बाट ऐशो आराम दौलत की फरावानी छोड़कर आने वाले इस शख्स ने अपनी और इनकी वो दुनिया जो बनाई थी मेहनत करके, अपने जोरे बाजू पर भरोसा करके, इस मेहनत के बाद मुलाजमत में तरक्कियां मिल रही हैं तो लबों पर तो मुस्कुराहट है मगर आंखों में दर्द फैला हुआ है। बहुत मेहनत जद्दोजहद के बाद अपना जाती घर तमीर किया है, तो इसमें पहला कदम रखते चेहरे पर खुशी नहीं दुख रकम है। बेटी की पहली सालगिरह, इसके स्कूल का पहला दिन, इसकी पहली तालीमी कामयाबी, इनकी जिंदगी की हर खुशी पर उदासियों के रंग छाए रहते, इन मोहब्बत करने वाले मियां बीवी के बीच इनकी शादीशुदा जिंदगी के पहले दिन से एक शख्स मौजूद था, वो शख्स जो इनके शोहर को कभी सच्चे दिल से हंसते और खुश होने नहीं देता था। जब वो दोनों तन्हा होते, एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते, तब कहीं से वो एक शख्स अचानक इनके बीच आ खड़ा होता। इसकी आमद की खबर इन्हें शोहर के चेहरे पर फैलती उदासियां दिया करती, इसकी आंखों में बिखरता दर्द दिया करता। बाप, भाई, घर, इन सबको छोड़ आने वाला वो शख्स दर हकीकत इन सबको अपने दिल में छुपाए बैठा था। तब नहीं मगर आज जानती थी कि वो इस घर, इसके दरो दीवार और वहां बसते एक एक फर्द से हसद में मुब्तला थी। वो सब इनके शोहर की जिंदगी में मौजूद ना होते इसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थे, और इन सब में वो सबसे ज्यादा हसद करती थी इस इंसान से जो उनके शोहर का बाप था, जिसकी यादों में जब इनका शोहर खोता इन्हें तो क्या खुद अपने आप को भूल जाया करता था। वो इन मियाँ बीवी की तन्हाइयों में शामिल था, वो इनकी खलबतों में शामिल था, वो इनकी मुस्कुराहटों में शामिल था, वो इनकी खुशियों में शामिल था, वो इनकी ज़िंदगी के हर लम्हे और हर पल में शामिल था। वो इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक देना चाहती थी मगर ऐसा कभी नहीं कर सकी। वो इस अनदेखे अनजाने शख्स से जलन, हसद और रकाबत में मुब्तला थी जो शोहर के साथ बिताए इनकी ज़िंदगी के 23 बरसों में कभी इनसे ना मिला, मगर वो हर पल हर आन अपनी मौजूदगी का, अपने होने का एहसास दिलाता रहा। वो भाई की मौत पर अपने घर 23 बरस बाद गया तो इन्हें इसके भाई की मौत का गम नहीं, ये फिक्र लाहक हुई कि 23 बरसों तक इनके शोहर के दिल पर हुक्मरानी करते वो सब लोग फिर इसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाने वाले हैं। जब वो नहीं थे तब थे, तो अब तो वो होंगे, अब तो वाकई पस मंजर में चली जाएंगी। वो शोहर अब कभी नजर नहीं आएंगी, शोहर इन्हें फरामोश कर देगा। हासिद किसी भी दूसरे इंसान से ज्यादा सबसे ज्यादा अपने ही आप को नुकसान पहुंचाया करता है। उन्होंने यही कहा, ये ना सोचा ये ना समझा कि दिन के कुछ घंटे बाप के और दूसरे खूनी रिश्तों के साथ गुजारने के बाद जब वो इनके पास आएंगे तो पूरे के पूरे इनके होकर आएंगे, इनकी तन्हाइयों में फिर कोई तीसरा शामिल नहीं होगा। पहले शोहर इनके साथ होता था मगर पूरा का पूरा इनके साथ नहीं होता था, इसके वजूद का एक हिस्सा हमेशा कहीं और होता था। अगर वो हासिद ना होती, समझदार और अक्लमंद होती तो समझदारी ही का फैसला करती, शोहर की मोहब्बत को हंसी खुशी इसके बाप के साथ बांट लेती। यही गलती थी इनकी, यही कसूर था और इनका यही गुनाह था। इनका शोहर का भाई मरा है, इसे तसल्ली नहीं दी, हमदर्दी मोहब्बत के दो बोल न बोले, इसके बाप को एहतराम से सलाम तक न किया, शोहर से, इसके बाप से, इसके घर के हर फर्द से रूठ कर एक कोने में बैठ गई। इस पहले से गमजदा शिकस्त खोर्दा अपने शरीक हयात को अपनी जात से कोई राहत कोई तस्कीन देने के बजाय मजीद दुख मजीद परेशानियां मजीद उलझने दी। गुनाहों का ना खत्म होने वाला सिलसिला था, गलतियों की ना खत्म होने वाली फहरिस्त थी। वो कितना अच्छा इंसान था, कितना सच्चा, कितना बावफा, कितना मोहब्बत करने वाला, और वो अपने हसद की आग में जलती इसे इसकी मौत से कबल कितनी अजियतों से दोचार कर गई थी। इन दिनों इनकी जिंदगी के पिछले 23 साल इनके सामने बिखरे पड़े रहते थे और वो इन 5 साल के रंजो अलम, दर्दोगम, पछतावे, दुख, मलाल, गलतियां, गुनाह, हर एक चीज देखती शुमार करती जा रही थी। इनका दिल शायद स्याह हो गया था, शायद पत्थर का हो गया था, तभी तो इस पर कुछ भी असर होता नहीं था। मगर फारा का फोन, इसकी बातें, इन्हें यूं लगा जैसे इस पत्थर को किसी ने यकदम ही रेजा रेजा कर डाला था। फारा रो रही थी और इसकी बातें सुनती वो भी बे आवाज रो पड़ी थी। वो रोते हुए बोल रही थी और ये रोते हुए सुन रही थी। जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी 12 घंटे जी रहा था तो इसकी बीवी नाराज होकर अपने भाई के घर चली गई थी। इसकी मुंतजी निगाहें पलट पलट कर दरवाजे की तरफ भी जा रही थी। अभी इस दरवाजे से शायद इसकी बीवी आ जाए, तुम्हारी वफा का सबूत, मेरे पास हमारे साथ गुजारे 23 साल हैं। इसकी बीवी और बेटी इस पर इतबार करती हैं, इसका यकीन करती हैं, इसकी मोहब्बत को दिल की गहराइयों से मानती हैं। वो सुनना चाहता था, वो देखना चाहता था, इसलिए कि इसकी सांसें उखड़ने लगी थी। फारा रोते हुए फोन बंद कर चुकी थी और वो रोते हुए रिसीवर हाथ में लिए जमीन पर गिरती चली गई थी। कई रोज अस्पताल दाखिल रही थी, कई रोज वह शदीद बीमार रही थी, मगर उन्होंने अपनी बहन को फारा को इतला देने से सख्ती से रोक दिया था। वो इसे रूट कर इन दिनों सात समंदर पार बैठी हैं। वो वीजा दूसरी कानूनी मुश्किलात के सबब इनके पास आ ना सकेगी, तो वहाँ अकेली न जाने किस कदर परेशान होगी। अस्पताल से आए भी अब इन्हें काफी दिन हो चुके थे, मगर अभी भी वो सारा वक्त बिस्तर पर लेटकर अपने कमरे में बंद गुजारा करती थी। शोहर के साथ बिताया हर पल इन दिनों इनके सामने आ रहा था, और इस हर पल का अहतमाम आखिर में एक ही पछतावे पर होता था। वो इसके जिंदगी के आखिरी लम्हों में इससे रूठकर दूर क्यों हुई? इन पछतावों से निकलना इतना आसान ना था। वो रोजे क्यामत शोहर को क्या मुंह दिखाएंगी जो इसके साथ रवा रखा? वो सलूक ही कम ना था कि इसके बाप के साथ इस शख्स से हसद करती थी, इसलिए इसकी मोहब्बत कबूल ना करती थी। हसद बुग़्ज़ कीना खुद के दिल में था और इल्जाम उस पर लगाती थी। वो दुखी इंसान किसी से क्या छीनने आता था, वो तो फकत मोहब्बतें बांटने चाहते बरसाने इनके पास आया करता था। हसद को नफरत के पर्दों में छुपाकर वो वाकई अंधी हो गई थी। बुरे से बुरा और गलत से गलत काम करते भी इन्हें ना अफसोस होता, ना शर्मिंदगी, ना मलाल, ना पछतावा। वो अपनी पोती से नहीं मिलेगा, इसे जल्दी जल्दी फोन भी नहीं करेगा। ये पाबंदी इस पर लगाई तो वो बगैर इख्तलाफ के इनकी बात मानता यूं ही करने लगा। हाँ, इनसे राबता करके बहुत जल्दी जल्दी अपनी पोती और इनकी खैरियत पूछा करता। वो जवाबन किस तरह बात करती, ये एक अलग गुनाह था। पोती को हर माह खर्चे के लिए दी जाने वाली रकम से हटकर खुद कुछ नहीं दे सकते थे। इन पर ये पाबंदी लगाई तो इसे भी मानते। पोती इन दोनों के लिए तहाइफ भी वली के हाथ, कभी किसी मुलाजम से, कभी किसी और जरिए से इन्हीं को भिजवा दिया करते कि वो खुद इसे ये सब दे दें। बेटी के दिल पर दादा की चाहते उल्फतें कहीं असर न कर जाएं, इस खौफ से वो तहाइफ कभी इसे दिया ही ना करती। अक्सर अपनी किसी भांजी, भतीजी या भतीजों या भांजियों को दे दिया करती। अगर कभी इसके लिए आई कोई चीज इसे देती भी तो ये कहकर कि ये तुम्हारे लिए बाजार से खरीद लाई थी, या मामू ने तुम्हारे लिए ली है, या मोमानी ने दी है, या खाला ने भिजवाई है। इसके लिए आई बहुत कीमती चीजें तो इसे दिया ही ना करती कि कहीं इसे शक ना हो जाए कि बेवजह और बेमौका मामू या खाला कीमती तोहफा नहीं दे सकते। इसके लिए बरसों से आते कीमती कलम, परफ्यूम, डिजाइनर हैंडबैग, स्वेटर, शाले, मलबूसात, इम्पोर्टेंट ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, सोने की कई जंजीरें, अंगूठियां, बालियां, ब्रेसलेट, यहाँ तक कि बहुत महंगा मोबाइल, बिल्कुल नए मॉडल का लैपटॉप और डिजिटल कैमरा तक भी इनकी बेटी नहीं, कोई भतीजा या भतीजी या भांजी या भांजा इस्तेमाल किया करते। बेहद फख्र नाज से फूफा या खाला का कीमती तोहफा जानकर इसे कबूल करते हुए इनके हसद ने किसी और के साथ तो क्या, इन्हें इनकी बेटी तक के साथ मुखलिस ना रहने दिया। वो इससे झूठ बोलती थी, वो इससे गलत बयानियां करती थी। इनकी बेटी दादा का भिजवाया पैसा बहुत संभल कर बड़ी एहतियात से और सिर्फ खास खास जरूरतों के लिए इस्तेमाल करती, और वो इस पैसे को पानी की तरह बहाती। इनके परस का मुंह हर वक्त खुला रहता, और वो अपने भाई बहन की सबसे दुलारी बहन, बावर की सबसे चहेती नंद, भतीजों भतीजियों की सबसे अच्छी, सबसे प्यारी फूफो और बांजे बांजियों की सबसे लाडली खाला बनी रहती। हसद में पागल होते उन्होंने कभी ये भी ना सोचा कि अगर मोहम्मद बख्तियार खान का माली ताउन मुसलसल इनके साथ ना होता तो शोहर की वफात के बाद वो और उनकी बेटी कहाँ खड़ी होती। इस जवान उम्र की मौत के बाद इनका शोहर जो छोड़कर इनके लिए गया, वो किसी ऐश परस्ती और शाह खर्ची का तो क्या, एक आम मतवस्त दर्जा की जिंदगी गुजारने के लिए भी ना काफी था। वो इस बाहैसियत खानदान की बहू ना होती, अपने ससुराल की इन्हें मुकम्मल माली सपोर्ट हासिल ना होती, फिर देखती कि कौन सा भाई, कौन सी बहन, बावर्च, कौन सा बांजार, कौन सा भतीजा इन्हें पूछ रहा है। अपनी बेटी को तनहा छोड़कर जिस बहन के पास बहुत इतराक और गुरूर से वो कनाडा आई थी कि बहन ने बड़ी चाहत से इन्हें अपने पास बुलाया था, अगर वो शख्स इन्हें अपनी बहू ना मानता, अपनी दौलत से इन्हें बेतहाशा ना नवासा, तो भी क्या ये बहन इतनी ही मोहब्बत से इन्हें पास बुलाती? 2.5 महीने से वो यहाँ रह रही है, क्या वो रह पाती? मोहम्मद बख्तियार खान को अज़ियतें देने पर कमर बस्ता, वो तो अपनी ही बेटी की जिंदगी उजाड़ने चली थी। माएँ बेटियों का घर बसाने की फिक्र करती हैं और वो उजाड़ने का सोच रही थी। इसकी बसी बसाई जिंदगी उजाड़ देने के दर पे थी। जिस बेटी के लिए बाप ने चुना था वो खूनी रिश्तों का एहतराम करता था, इनकी इज्जत और इनसे प्यार करता था, और जिसे उन्होंने अपनी बेटी के लिए चुना वो एक मादा परस्त, लालची और सती इंसान था। क्या वो जानती ना थी कि मरीज को फारा से शादी पर क्या चीज उकसाती है। फारा ना तजर्बाकार ना समझ है, मगर वो एक उम्र के तजर्बात और इतनी जिंदगी गुजारने के बाद क्या इंसानों को पहचानने के काबिल ना हो सकी थी। वो जानती थी, वो बिल्कुल जानती थी कि अपना करियर बना लेने, उस जिंदगी में हर तरह स्टेब्लिश हो जाने के बावजूद इनका आला तलीम याफ्ता हैंडसम बेहतरीन करियर रखने वाला और दीगर बेशुमार जाहरी खूबियों का मुरक्का भतीजा अपने लिए मौजूद कई कंवारी गैर शादीशुदा लड़कियों के बेहतरीन रिश्तों को छोड़कर इनकी निकाहशुदा बेटी से शादी का क्यों ख्वाहिशमंद था। खूबी फारा में नहीं, इसे विरासत में मिलने वाली करोड़ों की दौलत जायदाद में थी। वो जायदाद का मुतालबा भी खुला के साथ ही कर दें, इन्हें ये मशवरा देने वाला ही मौज था। जो शादियां लालच में की जाती हैं, इनका अंजाम क्या होता है, क्या वो जानती ना थी। बस वली साहिब खान ना हो, फिर चाहे कोई भी हो, वो इनकी बेटी से मोहब्बत करे या नहीं, इसके साथ मुखलिस हो या नहीं, आज जब अपने गुनाह शुमार कर रही थी तो रोते हुए अपने मरहूम शोहर का शुक्रिया अदा कर रही थी। वो जाते जाते बेटी को निकाह जैसे मजबूत रिश्ते में बांध गया। अगर वो उस रोज फारा का निकाह ना करते, सिर्फ जबानी बात तय करते या मंगनी ही कर देते, तो वो कब की वो मंगनी की अंगूठी वली साहेब खान मोहम्मद बख्तियार के मुंह पर मारकर फारा की मौज के साथ खूब धूमधाम से शादी करवा चुकी होती। ये इनकी बेटी के बाप और दादा की दुआएं और इनके दुरुस्त फैसले ही थे कि वो जो अपने तमाम तर हसद नफरत और इंतकाम की आग में पागल हो जाने के बावजूद बेटी की जिंदगी को किसी बड़े साने से दो चार ना कर पाई थी। जवान बेटी को दुनिया के रहमो करम पर बिल्कुल तन्हा छोड़कर खुद यहाँ एक दूसरे मुल्क आ बैठी, ऐसा करते ना दिल कांपा ना वजूद पर लर्जिश तारी हुई। आज उनके लिए किए का भुगतान भुगत रही है, इनकी पैदा करदा मुश्किलात में घिरी जिंदगी गुजार रही है। वो अपने शोहर से कैसे माफी मांगे, वो तो इनसे रूठ कर दूर देश जा बसा है। मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया, आप कब करेंगी, इस जिंदगी में कर लें, अभी वो बूढ़ा इंसान जिंदा है, अभी हम अपने गुनाहों की इससे माफी मांग सकते हैं। कई हफ्तों से मुतवातर बेटी के ये अल्फाज इनके कानों में गूंज रहे थे, मगर खुद में इतना हौसला तो पैदा कर पाती कि इसका सामना कर सकें, इससे माफी मांग सकें। इस सुबह कामते हाथों से वो मोहम्मद बख्तियार खान के घर का फोन नंबर मिला रही थी। किसी मुलाजिम ने फोन उठाया था और उन्होंने बेटी के बजाय सुसर से बात करना चाही थी। हेलो रूही बेटा, ये तुम हो, इनकी समातों से वो बूढ़ी नहीफ आवाज टुकराई तो बेख्तियार इनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आगा जान मुझे माफ कर दे, इन्हें इस एहतराम वाले लकब से उन्होंने जिंदगी में पहली बार मुखातब किया था, वरना गुफ्तगू बगैर किसी लकब के सिर्फ आज से शुरू हुआ करती थी। वो क्या बोली, इनसे कुछ बोला ही ना जा रहा था, गुनाह इतने थे, वो किस किस का एतराफ करें, किस किस की माफी मांगे। रूही बेटा तुम, इनका मोहब्बत में डूबा लहजा इन्हें निदामतों की अमीक गहराइयों में धकेलने लगा, इन पर जैसे कोई कोड़े बरसा रहा था। मेरे गुनाहों की गठरी बहुत वजनी है आगा जान, बहुत वजनी, आपसे अपने किस किस कसूर की माफी मांगूं, चाहती तो ये हूँ कि आपके पास आकर आपके पांव पकड़कर माफी मांगूं, मैं तो आपके सामने आकर खड़े होने की जुर्रत भी नहीं खुद में कर पाती। वो रो रही थी, अपनों में रंजिशें गिले शिकवे लड़ाइयाँ सब कुछ हो जाया करता है बेटा, इन्हें याद रखना और दिल से लगाना नहीं भूल जाना चाहिए, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे खफा नहीं, बस अब सब कुछ भूल कर यहाँ आ जाओ। ये आला जरफी वसील कल्बी ने मजीद कुछ और निदामतों के समंदर में दंसा गई। मैं आपके पास आऊंगी आगा जान, जरूर आऊंगी, मैं आपके पांव पकड़कर आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी, मगर मुझे कुछ वक्त दे दें, मैं वली को भेजूं तुम्हारे पास या कहो तो फारा को, तुम उनके साथ। वो इनकी शर्मिंदगी पशेमानी और तजब्जब को देखकर बेख्तियार बोले, नहीं किसी को नहीं, अवादा करें मुझे लेने किसी को नहीं भेजेंगे, वापसी का ये सफर मैं खुद तय करूंगी, इस बार आप नहीं मैं आपके पास आऊंगी, बस मुझे कुछ मोहलत कुछ वक्त दे दें। फिर उन्होंने फारा से बात करवाने की दरख्वास्त की। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, वो शायद वहीं कहीं पास ही मौजूद थी, तब ही तो लाइन पर अगले ही पल वो मौजूद थी। फारा देखा आगा जान मुझे लेने किसी को ना भेजें, वरना मैं पस्तियों में कुछ और दंस जाऊंगी, इन्हें ऐसा मत करने देना फारा, मैं कोशिश कर रही हूँ, तुम दुआ करो मैं खुद में जल्द इतना हौसला और हिम्मत जमा कर पाऊँ कि यहाँ तुम सबके पास आ सकूँ। वो इसे रोते हुए बोली, तुम मुझे बहुत याद आ रही हो बेटा, मैं जल्द तुम्हारे पास आऊंगी। वो खामोशी से इनकी आवाज़ सुन रही थी। उस रोज इसने बहुत कुछ कहा था, शायद आज वो सिर्फ इन्हें बोलने का मौका दे रही थी। फारा, मईस तुम्हारे काबिल नहीं। जो मैंने चुना वो गलत, जो तुम्हारे डैडी ने चुना वो सही था। अपने आंसुओं पर काबू पाते वो धीमी आवाज में बोली, नफरतों को इंतहाओं तक ले जाने में मैंने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन अगर वली अभी भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाता है तो तुम इस रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर देना। फारा, जो अपने वालदैन और अपने खूनी रिश्तों के साथ मुखलिस है वो दुनिया के हर रिश्ते के साथ मुखलिस होगा। वो वली से कहना चाहती थी कि इनके गुनाहों की सजा वो इनकी बेटी को ना दे। वो मासूम है, बेकसूर है, वो बहुत सच्ची बहुत अच्छी है। वो इसे अपना ले, अपना नाम इसके नाम के साथ जुड़ा रहने दे। इन्हें चाहे कभी माफ ना करे, इनसे चाहे कभी ना मिले, कोई राबता कोई वास्ता कोई ताल्लुक ना रखे, मगर इससे ये सब कहने का वो मुंह कहाँ से लाती। इनका मुंह नहीं था इससे कुछ भी कहने का। अब बस सिर्फ दुआओं पर इन्हें भरोसा था, सिर्फ दुआओं पर। माँ की दुआ इसकी औलाद के हक में जो अल्लाह रद्द नहीं करता। वो आगा जान को रोता देखकर इनके पास आ गई थी और ये जानकर कि ये फोन इसकी माँ का है वो इनके बिल्कुल साथ लगकर बैठ गई थी। माँ क्या कह रही है इसे पता नहीं था, मगर जवाब में आगा जान क्या कह रहे थे वो सुन रही थी। इसकी आंखों से खुशी के आंसू बेख्तियार बह निकले थे। मोहब्बत जीत गई थी, मगर मोहब्बत की जीत के इन अनमोल और यादगार लम्हों में जब वो पूरे दिल से खुश हो रही थी, खुशी मसरत के आंसू बरसा रही थी, तब माँ की इस आखिरी बात ने इसे याद दिलाया था कि खुशी के इस हिस्से में अब जिंदगी भर कभी भी पूरी आ नहीं सकती।